फिर अहले किताब के लिए तमाम हुज्जत आयत 19 में, यानी अब बस चैप्टर क्लोज हो रहा है। हमने तुम्हें सारे रिसोर्सेज दे दिए, हमने तुम्हारे पास अल्लाह का नबी भेज दिया, तुम्हारे पास किताब भी आ गई, अब तुम्हारे नसीब में नहीं है तो फिर तुम अपने नसीब पे खुद ही रो लो। या अहलल किताब क़द जाकुम रसूलुना युबय्यिनु लकुम अला फतरति मिन रुसुल, यानी देखो कितना अरसा गुजर गया था, कुछ नहीं हुआ था, कोई और नबी नहीं आया था, और अल्लाह ने अब तुम्हें एक नबी दिया ताकि कल क़यामत के दिन तुम ये ना कह दो कि हमारे पास भी कोई डराने वाला आता, कोई खुशखबरियाँ देने वाला आता तो हम भी मान जाते, तो लिहाजा अपनी इस्लाह करो। फिर इसके बाद आगे आयत 20 से 21 में बनी इसराइल को निफाज़े शरीयत के लिए क़िताल करने की दावत दी, जिसमें आप देखेंगे कि मूसा अलैहिस्सलाम का तذکرہ दोबारा आ रहा है। पीछे हमने बात की कि इन्होंने जिहाद का इनकार किया था, अल्लाह ताला ने इनको दोबारा वो पैगाम दिया। व इस क़ाल मूसा लिकौमी ही या कौम इस्कुरु नेमत अल्लाही अलैकुम इस जाल फीकुम अंबिया, ए बनी इसराइल अल्लाह की उस नेमत को याद करो जो उसने तुम पे की, जब उसने तुम्हारे बीच में नबी भेजे, तुम्हारे पास बादशाह भेजे, और तुम्हें तो वो कुछ दिया जो दुनिया में किसी और को नहीं दिया। ये वही प्रवोक किया जा रहा है, इमालका कौम से जिहाद करो। फिरौन के डूबने के बाद बैतुल मक़दस का इलाका यानी मुल्क शाम इमालका नाम के कौम के कब्जे में आ चुका था। अल्लाह कह रहे हैं जाओ लड़ो, और साथ ही कह दिया था कि मैंने क्या किया। देखिए आयत कितनी प्यारी है, या कौम इदखुलुल अर्दल मुक़द्दसत अल्लती कतबल्लाहु लकुम, इस लफ्ज़ कतबल्लाहु लकुम को हाईलाइट करें। अल्लाह घर से पैगाम दे के निकाल रहा है कि फतह तुम्हारी होगी। क्या आज हम मुसलमानों को अल्लाह ने नहीं वादा दिया, वादल्लाजीना मनवामिलुसालिहाती, सूरत नूर में आप पढ़ेंगे लयस्तखलिफन्नकुम फिल अर्द, यानी अगर आज हम सच्चे मोमिन बन जाएं, मुसलमान हो जाएं, अल्लाह कहते हैं मुसलमानों की फतह। अंतुमुल आलाउना इन कुंतुम मोमिनीन, सूरत आल इमरान में हम पढ़कर आए। तो क्या पता चला कि मुसलमान को अल्लाह के वादों पे एतबार करना है। उसके बाद बनी इसराइल का अल्लाह की राह में किताल से इनकार, वही धान के पान। आयत 22 से 24 में वो पूरा किस्सा जो हम पीछे सूरह बकरा में भी पढ़ चुके, कहने लगे या मूसा कालो ना ना, यानी नबी के साथ देखिए कैसा अंदाज़ है, नाम ले रहे हैं। किसी कौम ने नबी का नाम नहीं लिया जो महज़ब होती थी, गैर महज़ब कौमें अपने नबियों का नाम लेती हैं, आज कुछ लोग नबी का भी नाम लेते हैं। पूरे कुरान में अल्लाह ताला ने नबी को उस नाम से नहीं पुकारा जिससे आज लोग पुकारते हैं, कभी याहुल मुजम्मिल कहा, याहुल मुद्दसर कहा। तो नाम लेना एक ज़रा सा गैर मारूफ सा तरीका होता है, हम अपने बाप का नाम नहीं लेते, अपने उस्ताद का नाम नहीं लेते। तो इन्होंने क्या कहा, या मूसा, जब दिल में इज्जत नहीं होती ना तो हमारे अंदाज से पता चलता है। क्या कहा, इन नफीहा कौमन जब्बारिन, उधर तो बहुत कड़ियल जवान रहते हैं। इमालका कौम के कद बहुत लंबे थे, उसकी तरफ इशारा है। और इसमें जो जुमला मैं आपको देना चाह रही हूँ वो बहुत अहम है, वह इन न लन नद खुला, हम नहीं कभी भी उधर दाखिल होंगे, हत याखरजो मिनहा, हाँ पहले वो निकलें फिर हम जाएंगे। यदि दुश्मन को कहें बड़ी इज्जत से निकल जाओ फिर हम जाकर फतह का झंडा लगाएंगे, क्या आज तक ऐसा हुआ, कॉकरोच भी नहीं ऐसे तो निकलते, चोर नहीं ऐसे निकलता। मेहनत करनी पड़ती है, जब कौमें गुलाम होती है ना तो उनके दिलों में अपने मकसद से दूरी आ जाती है। तो बहरहाल इस पर बहुत बात की जा सकती है, लेकिन आयत 25-26 अगर आगे खोल लें तो हज़रत मूसा की फिर इस बुज़दिल कौम के खिलाफ बद्दुआ है। देखिए नबी क्या करेगा, देखिए खुशकिस्मत लोग बड़ों की दुआएं लेते हैं और बदनसीब उनके दिलों की आह लेते हैं। नबी ने ज़ुबान से तो क्या बददुआ की होगी, लेकिन उनके दिल से ये आह निकल गई थी जिसका अल्लाह ने इस आयत में तस्करा कर दिया कि काल रब्बी निलाम लिकु इल्ला नफसी वाखी, अल्लाह मुझे तो बस अपना और अपने भाई का ही पता है, फफरुक बैना ना व बैना कौमिल फासिकीन, बस ख़त्म, अब मेरा इनसे फासला कर दे, क्या किया जाए। अब देखिए कि एक वक्त आता है कि फिर इंसान को फतह ताल्लुक करना पड़ता है, वरना तो जो उन पर अजाब आएगा वो आप पे भी आ जाएगा। अल्लाह ने कहा फ़इन्नहा मुहर्रमतुन अलैहिम 40 सना, 40 साल तक अब यह ज़मीन हराम हो गई, कौन सी, बैतुल मक़दस के इर्द गिर्द की जगह, यतीख होना फिल वादी यतीख में रहते थे, वॉन्डर ब्लाइंडली एमलेस, और यकीन कीजिए इस वक्त हम मुसलमान भी तीख के मैदान से गुजरे हैं। ये जो हमारी 70 साल गुजरे हैं ना, ये भी इस वक्त हम भी बेमकसद कौम है, रात 2-2 बजे तक सड़कों पे बैठे खा रहे हैं पी रहे हैं, हमारी भी ज़िंदगी इस वक्त बिल्कुल बेकारियत है, सिर्फ सुबह उठकर ये सोचते हैं क्या पकाना है क्या खाना है, मर्द सोचते हैं क्या कमाना है, बच्चे कहते हैं हमने स्कूलों में जाकर क्या गुल खिलाने हैं। कोई बड़ा मकसद जब कौमों के पास नहीं होता तो उनका यही हाल है। फिर इसके बाद आयत नंबर 27-29 में हाबील का हकीम नवाज, बड़ा मारूफ किस्सा जो आपने भी सुना होगा, दो भाइयों की कहानी हाबील और काबील, जो आयत नंबर 27-29 में है। वतलु अलैहिम नबा से बात शुरू होती है। क्या पता चला कि तारीख इंसानी का पहला नाहक कत्ल, जिसमें एक भाई ने रिकाबत और हसद की वजह से दूसरे भाई को कत्ल किया, और फिर समझ नहीं आ रही कि उसकी डेड बॉडी को क्या किया जाए, और कव्वे के जरिए अल्लाह ताला ने ये सिखा दिया कि एक इंसान अगर अल्लाह ना उसको बताए तो उसको ये तक नहीं पता कि मुर्दों को कैसे दफन करना है। अब चूंकि ये कत्ल की बात थी ना, तो फिर आए 32 और उसके ऑनवर्ड चीज़ों में अब इंसानी जान की हुरमत की बात है। और बनी इसराइल की हिस्ट्री में कत्ल बहुत आम है, गाजर मूली की तरह ये लोगों को काटते थे, नबियों को काटते थे, और कत्लो गारतगरी का सिलसिला अभी तक चल रहा है। आगे आए 33-34 में दहशत गर्दी की सज़ा, डकैती की सज़ा, अल्लाह ना करे घर में डाकू आ जाएं तो उनके साथ क्या मामला होगा। ये आए 33-34 में है कि उनको किस तरीके से पकड़ा जाएगा। और फिर आगे आयत नंबर 35 में वसीला, अल्लाह का कुर्ब कैसे हासिल करो। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वब्तगू इलैहिल वसीला, यानी अल्लाह ताला के साथ अपने ताल्लुक़ को महसूस करो और उसके रास्ते में मेहनत करो। आप इस आयत की तफसीर सुनिएगा, तकरीबन 7 से 8 किस्म के वसीले यहाँ बयान किए गए हैं कि हम कैसे अल्लाह का कुर्ब हासिल करें। फिर इसके बाद आयत नंबर 36-37 में टॉपिक क्या है कि काफिर जहन्नम से निकल नहीं सकते। क्या किसी मुल्क की जेल में से मुजरिम निकल सकता है? जहन्नम क्या है? अल्लाह ताला की जेल है। फिर इसके बाद आए 38-34 में चोरी के जुर्म के लिए हद है। इस्लाम में जिन सज़ाओं पे हद लगती है, यानी एक अपॉइंटेड सज़ा है, उसमें चोरी है, तो उसका तज़किरा आए 38-34 में। यहाँ नोट कीजिएगा, वसारिकु वसारिका, पहले मर्द का जिक्र है फिर औरत का, जबकि आगे आप सूरत नूर में देखें कि जिना की बात में पहले वज़ानिया और फिर जानी। क्या पता चला कि मर्द कवाम है, अगर वो चोरी करेगा तो उसका जुर्म ज़्यादा है, और औरत अपनी इज्जत की हिफाजत करेगी तो वो बच जाएगी, अदरवाइज उसका नाम उधर लिया गया, तो यहाँ चोरी की सज़ा है। फिर इसके बाद आयत 41 से दोबारा मुनाफिकीन का तज़किरा है। क्या पता चला कि मुनाफ़िकत ज़ुबान से ईमान का इजहार करना लेकिन दिल ईमान से महरूम रहे, कौल और फेल का तज़ाद। हम सब अपने आप से पूछें, क्या दिन में जितनी बार अल्लाह का नाम लेती हूँ, कलमा पढ़ती हूँ, क्या वाकई दिल में उतनी उससे मोहब्बत और उसकी बात को मानने का शौक भी होता है? फिर आयत 42-43 में क्या है कि अल्लाह ताला अदल करने वालों को पसंद करता है। कैसे? इन्नल्लाह युहिब्बुल मुक्सितीन, तो अल्लाह ताला हमें अदल करने वाला बना दे। फिर इसके बाद आयत 44 बड़ी अहम है, जिसमें शरीयत के मुताबिक फैसला ना करने वाले को काफिर कहा गया। और आप नोट करेंगे आयत 44 में तौरात का नाम लिया गया, अगली आयत 45 में इनकी कुछ सजाओं को पेश करके, यानी आप कह सकते हैं कि ये जो आयतें हम पढ़े ना, ये तौरात की आयतें हैं। उन्होंने अपनी मर्जी से अहकामात बदल दिए, अल्लाह ने इनका तज़किरा इधर किया। यहाँ तक पैगाम था बनी इसराइल में यहूद का, और आगे देखिए तो आयत 46-7 में शरीयत को नाफिज ना करने वालों को फासिक कहा गया, नसारा के नाते से, कि अगर यहूद ने अल्लाह की किताब नाफिज ना की अमली तौर पे और क्रिश्चियंस ने ना की। और इसके बाद आप देखिए कि मुसलमानों के लिए तो बात इससे भी लंबी है कि मुसलमान ख्वाहिशात के पीछे पड़कर शरीयत नाफिज नहीं कर पा रहे। तो आयत 48-49, यानी यहाँ पे ये टॉपिक किस हद पे पूरा हुआ, अगर इसको इकट्ठा जोड़ दूँ तो पता चला कि जिस भी इल्हामी मज़हब की हामिल कौम ने अल्लाह की किताब को प्रैक्टिकली नाफिज ना किया तो अल्लाह ताला की रहमत से वो दूर हो गए। और उसके बाद फिर आयत 50 बहुत अहम आयत है, अफा हुक्मल जाहिलियत यबून, क्या तुम जाहिलियत का हुक्म चाहते हो? क्या अल्लाह ने तुम्हें इस्लाम दिया और तुम दोबारा जहालत के काम करते हो? अगर आप इस पे सोचिए कि आज के दौर में हम मुसलमानों के इर्द गिर्द कौन से जहालत के काम हो रहे हैं, और ये लफ्ज 4 दफ़ा कुरान में आता है, इंशाल्लाह आगे जहाँ आएगा तो आपको इस पे मज़ीद बताऊँगी कि हुक्म के लफ्ज़ के साथ जाहिलियत और फिर आगे दूसरी चीज़ों से क्या मुराद है। आयत 51-53, यहूद और नसारा को दिली दोस्त ना बनाओ, इसका मैसेज ये है। और अल्लाह ताला ने खोल कर बयान कर दिया कि जो ऐसे लोगों को दोस्त बनाएगा जो अल्लाह के दुश्मन है और अल्लाह की बात नहीं मानते, तो एक दिन तुम्हारे अपने अंदर से भी उन गलत चीज़ों की मोहब्बत ख़त्म होगी। और फिर इसके बाद अब पारे का एंड शुरू हो रहा है जिसमें अल्लाह अपने महबूब बंदों की सिफात बयान करता है। बड़ी खूबसूरत आयतें हैं, या अय्युल्लज़ीना आमनू मन यरतद्द मिनकुम अन दीनी, यानी अगर वो मुसलमानों, ओ पैदाइशी मुसलमानों, तुम अल्लाह के दीन से फिरते हो तो शौक से फिर जाओ, तुम कहते हैं आई एम नॉट मुस्लिम तो जाओ, तुम्हारे ना जाने से क्या होगा। फसौफ़ यातिल्लाहु बिकौमि युहिब्बुहुम व युहिब्बूनहु, अल्लाह तुम्हें ले जाएगा और दूसरों को ले आएगा। और ये कौन है आपको पता? रिवर्ट्स। आज वेस्ट में तबलीग करने वाली मेजोरिटी रिवर्ट्स की है, कन्वर्ट्स हैं, जो खुद कुफर से, जहालत से इस्लाम पे आते हैं, फिर अपनी पूरी ज़िंदगी डिवोट कर देते हैं उम्मत वसत बनने में, शहादत हक की गवाही देने में, और फिर अल्लाह ने उनकी खूबियाँ लिखी। अल्लाह करे कि आज हम सब इसको अपने अंदर देखें और वाकई अल्लाह के महबूब बंदों की खूबियाँ, आपस में मोहब्बत करना, कुफर के खिलाफ दिल में ग्रज होना, अल्लाह के रस्ते की जिद्दोजहद करना और किसी मलामत आले से ना डरना। आज हमारा मसला पता क्या है कि हम लौमत लाइम से डरते हैं, हम कहते हैं लोग क्या कहेंगे, बिरादरी क्या कहेगी, ख़ानदान क्या कहेगा। इसलिए फिर आगे 55 से 56 में अहले ईमान के हकीकी दोस्त कौन है। पीछे मना किया ना कि तुम दुश्मनों से दोस्ती ना करो, तो अब बता दिया किन से दोस्ती करो। इन्नमा वलीयुकुमुल्लाहु व रसूलुहु वल्लज़ीना आमनू, यानी बेशक तुम्हारा दोस्त अल्लाह भी है, रसूल भी हैं और ईमान वाले भी हैं। कौन से ईमान वाले? नाम वाले नहीं, अल्लज़ीन यकीमुन अस्सलात, जो नमाज़ पढ़ते, ज़कात देते और रुकू करते हैं। और जो अगर इनसे दोस्ती कर लेगा तो फ़इन्न हिज़्बल्लाहि हुमुल ग़ालिबून। बड़ा खूबसूरत पैगाम मिल रहा है आपको मुझे कि अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे मुल्क तरक्की करें और इंडिविजुअली भी तुम्हारी ज़िंदगी में सुकून हो, तो तुम्हें अच्छे लोगों से दोस्ती करनी होगी। फिर आयत 57-58 में दीन इस्लाम का मजाक उड़ाने वालों को दोस्त ना बनाने की बात है। या अय्युल्लज़ीना आमनू ला तत्तखिज़ुल्लज़ीना इत्तखज़ू दीनकुम हुज़ुवा। और आप देखिए, जिससे मोहब्बत होती है ना, इंसान को उससे नफरत करने वाला अच्छा नहीं लगता। कहते हैं एक आपका अपना दोस्त है और एक आपके दुश्मन का दुश्मन भी आपका दोस्त है। तो इस असूल को आज सामने रख कर बस ये कह लीजिए कि उम्मत मुस्लिमा को अपनी नस्लों को अल्लाह और दीन की कुर्बत देनी है। अजान का मजाक करने का एक वाक़ा है इन आयात के पीछे, आप तफसीर में से उसको पढ़ भी सकते हैं। फिर आयत 59 से 60 से पता चलता है कि अल्लाह के नज़दीक बदतरीन लोग कौन है। ये वो लोग हैं कि जिन्होंने ये तो कहा था हम ईमान लाए अल्लाह पर और उसकी किताबों पे, लेकिन अमली तौर पे कौन थे? वन अक्सरकुम फासिकून, पहले पारे में याद कीजिए, हदों से गुजरने वाले को फासिक कहते हैं। फिर इसके बाद आयत 61 से 63 में अहले किताब के शर्मनाक जरायम है। वो हमें क्यों बताए जा रहे हैं कि तुम वो काम ना करना। और आप देख लीजिए कि इसमें युसारे नफिल, इसमें गुनाहों में दौड़ धूप करते हैं, ज्यादती के काम करते हैं, हराम खाते हैं, और उनके जो उलमा थे वो लोगों को बुराई से नहीं रोकते थे। फिर आयत 64 में यहूद का अल्लाह ताला पर एक बहतान है, नऊज़ुबिल्लाह, जो कि उनकी ज़ुबान की भड़ी हुई बात है कि यदुल्लाही मगलूला, नऊज़ुबिल्लाह, कि अल्लाह के हाथ बंधे हुए हैं। जब याद रखिए कि दिल में इज्जत नहीं होती तो अल्फाज में भी बात नहीं होती। और फिर एंड पे अब यहाँ से समझें कि जिस मैसेज पे पारे ने पूरा होना है वो क्या है कि तुम मुसलमान चाहते हो कि तुम्हारे मुल्कों में, तुम्हारी जिंदगियों में बरकत आए, तो नफाज़े शरीयत करो। शरीयत को नाफिज करने की बरकत है। वो कोई भी कौम हो, वलवन अहल किताब भी हों या आज के मुसलमान भी हों। और आज भी देखिए, सऊदी अरब में तेल के कुएं कब निकले थे, हिस्ट्री में जाके पढ़िए, जब उन्होंने शरीयत को नाफिज किया था। आप भी, मैं भी आज इस मुल्क के लिए दुआ करें कि जिसको इस्लाम के नाम पे अल्लाह ने दिया, हम उसके अंदर शरीयत को नाफिज होता हुआ देखें। और इसके लिए करना क्या पड़ेगा? तबलीग। इसलिए आयत 67 में कुरान पाक की तबलीग को एक अहम जिम्मेदारी बनाकर हमारे सामने रखा। या अय्युहर रसूल बल्लिग मा उन्ज़िला इलैका मिन रब्बिक, यानी जो काम नबी ने किया वही काम आज हम सब ने करना है। अल्लाह हमें दूसरों से बचाएगा। नहीं कर रहे आज मुसलमान, तो अल्लाह ने 68 आयत में बता दिया कि जो शरीयत नाफिज़ नहीं करते ना उनकी दुनिया में इज़्ज़त होती है ना अल्लाह की राह में। आज भी बाहर के लोग मुसलमानों को क्या कहते हैं कुरान के बारे में कि ये वो किताब है जो पढ़ी तो सबसे ज़्यादा जाती है पर अमल नहीं होता। तो बेअसूले और बेअमल शख्स को दुनिया का कोई कानून पसंद नहीं करता। आयत 69 में क्या बता दिया कि किसी गिरोह से निस्बत आखरत में निजात के लिए काफ़ी नहीं है, चाहे अम्बिया कराम से निस्बत हो जाए जब तक के अमल ना हो। फिर आयत 70 से 71 में शरीयत के बजाय ख्वाहिशात नफ्स की पैरवी की बात है, यानी शरीयत बमुकाबला शहवत। आज हमारे कल्चर में भी यही है, हम शहवत परस्त हो गए, लस्ट, लग्जरियस लाइफ, अल्लाह की नाफरमानी वाली, लिहाजा उससे अल्लाह ताला ने रोक दिया। और फिर आयत नंबर 72 में शिर्क करने वाले पर जन्नत हराम है, इसका मौजू देकर आयत 73 से 74 में दोबारा तसलीस के अकीदे को बातिल करार दिया गया। ये हिस्सा आप अपनी नॉन मुस्लिम फ्रेंड्स और साथियों और मेट्स के साथ शेयर कर सकते हैं कि कैसे लक़द कफ़र लज़ीना क़ालू इन्नल्लाहा थालिसु सलासा। सिर्फ इतना जुमला अगर आप पढ़ लें, जो तीन में का तीसरा कहते हैं वो कुफर करते हैं। तो बहरहाल इसकी डिटेल्स पढ़िए ताकि आपको मुझे भी समझ आए कि अल्लाह ताला क्या चाहते हैं। हज़रत ईसा और हज़रत मरियम का असल मुकाम फिर क्या है, उसका तज़किरा 75 से 76 में है कि मल मसीह इब्न मरियम इल्ला रसूल, और इसी तरह उनकी माँ की भी बात की गई। आयत 77 में गलूफ से रुकने के लिए बनी इसराइल को, नसारा को कह लीजिए, दो गुमराहियों से रोका जा रहा है। नंबर एक, गलूफ ना करो, डोंट एग्जैजरेट हज़रत ईसा को, और दूसरा बात है ला तत्तबि अख्वा कौमन कद दल्लू। ये नसारा किसको देकर भटके थे, यूनानियों को देकर, यानी इसकी पूरी हिस्ट्री है। जब डिटेल से आयतें पढ़ते हैं तो बताया जाता है कि अगर आज हम मुस्लिम नॉन मुस्लिमों को देख रहे हैं तो अपने दौर में नसारा कैसे बिगड़े थे, तो उसका तज़किरा है कि इन्होंने यूनानी कल्चर से मरूबियत ली थी। और फिर आयत नंबर 78-79 में बनी इसराइल की नाफरमानियों पर पैगम्बर की तरफ से लानत है। कितनी महरूम है वो कौम जो पैगंबरों की तरफ से दुआएं लेने, सिफारिश करवाने, या उनकी तरफ से कह लीजिए कि अल्लाह के हाँ कोई माफ़ी होती, बल्कि ये नबियों की तरफ से लानत लेते हैं। ये बिल्कुल उस बच्चे की तरह जो माँ बाप की दुआएं लेने की बजाय उनकी सलवातें ले। और उसके बाद फिर आयत 80 से 81 में यहूद की मुशरिकीन से दोस्ती पे गज़ब है, तरा कसीरम मिनहुम से बात शुरू हो के फासिकून तक, और आखिर में फिर आयत 82 में मुसलमानों को दोस्त और दुश्मन का फ़र्क बता दिया, लतजीदन नाशदन नासे, यानी नसारा में फिर भी नरमी है दूसरे गिरोह की नस्बत। तो क्या पता चला कि शरीयत के जो मकासद थे ना, इस पूरे पारे में अल्लाह ने उसको कवर करवा दिया। जिना हराम है क्योंकि हसब नसब की हिफाजत अल्लाह चाहते हैं, कत्ल हराम है क्योंकि जान की हिफाजत चाहिए, शराब हराम है इसलिए कि अल्लाह अक्ल की हिफाजत चाहते हैं, और चोरी इसलिए हराम है कि माल की हिफाजत हो, और बहतान पर सज़ा है इसलिए इज्जत की हिफाजत है। बहुत ही खूबसूरत तरह से अल्लाह ने सूरत मायदा में हमें ये मकासद शरिया दिए। अल्लाह ताला आपको मुझे अमल की तौफीक अता फरमाए। जज़ाकुमुल्लाह खैर व अहसनुल जज़ा। सुभान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन व अलहम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।